ओम अज्ञातिमिरं दशिज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोदितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वप्रदान्तिकं जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द्रैतगदाधर शिवासदि गौरभक्तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके सो पांचवें अध्याय में भगवान ने बता दिया कि पांचवें श्लोक में कि जो लोग शरीरधारी है, जो देहधारी है, जिसने शरीर धारण किया है, उसके लिए उससे विपरीत कॉन्सेप्ट जो है उसके विषय में चिंतन करना बड़ा मुश्किल है। अब मैं शरीर धारण किया है, मुझे पता है कि नींबू का स्वाद खट्टा है और चीनी का स्वाद मीठा, ये मुझे पता है। अभी मैं इस तथ्य को, इस सत्य जो है जो मैंने अनुभव किया, उसको मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। अब कोई आके मुझे कहेगा कि चीनी मीठी नहीं है या चीनी जैसा कुछ होता है, तो आप कैसे अनुभव, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, आपके लिए बात असंभव है मानना। आप अपनी आंखों से देख रहे हो और आप किसी ऐसे व्यक्ति का सोच रहे हो कि जिसके पास आंखें ही नहीं है, और वो उस व्यक्ति की कल्पना करना ही मुश्किल है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। सो छठे श्लोक में, छठा और सातवें श्लोक में भगवान बताते हैं द ईज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड गोल बाय प्रैक्टिसिंग ट्रू भक्ति। जो सही भक्ति है उसका आचरण करने से जो इच्छित लक्ष्य प्राप्त होने में जो सरलता प्राप्त होती है भक्ति मार्ग से, साकार उपासना से, उसके विषय में बताए। पढ़िए छह और सात पढ़िए।
जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपनी चीजों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए यह बात मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ।
भगवान कहते हैं कौन सी चीज बताइए, क्या क्या करता है, बट कौन से लोग दोज वर्शिप मी जो मेरी पूजा करते हैं, सारे कार्य मुझ में समर्पित करते हैं, दूसरा वो मैया क्या है, वो श्लोक क्या है, फर्स्ट क्या है, ये तू सर्वाणि कर्माणि मई संन्यस्य, सारे कर्मों को मेरी सेवा में डाल देता है, मई संन्यस्य मत परम, जो मुझे परायण है। गीता से फोन करो इस बोलेगी इज कमिंग टुडे और नॉट। तो मुझ में परायण है, फिर भाई मत 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 परायण, फिर श्लोक क्या है, अनन्य तो अनन्य योगी अर्थात और किसी को नहीं, विदाउट डिविएशन सीधा भगवान के ही योगी ना ध्याय एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति में एंगेज है, जुड़ा हुआ है नवदा भक्ति में, और ध्याय उपासते अर्थात जो ध्यान से मेरी उपासना कर रहे, ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी, जैसे आप लोग कर रहे हैं, कोई जगन्नाथ जी का श्रृंगार कर रहा था, कोई गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा था, लाइक ध्याय उपासते भगवान का चिंतन कर रहा है, राइट, लाइक दिस हैविंग फिक्स्ड देयर माइंड्स अपॉन मी, इस तरह से अपने मन को मुझ में स्थिर करके जो मेरी सेवा कर रहे हैं, हे पृथापुत्र, फॉर देम चिरात अचिरात पार्थ, व्हाट इज दैट श्लोक? भवामी न चिरात, मैं उन सबको अति शीघ्र, न चिरात अर्थात बहुत जल्दी, वेरी सून, भवामी न चिरात पार्थ, मैया वेशित चेतसाम, किनको? जिनका मन मुझ में स्थिर है, क्या करता हूँ? मृत्यु तेषाम अहम समुद्धरता, तेषाम उन लोगों का अहम, मैं समुद्धरता, उन सबका उद्धार करता हूँ, कहाँ से करता हूँ उद्धार? मृत्यु संसार सागर, मृत्यु संसार, मृत्यु संसार का अर्थ होता है ऐसा संसार जहाँ पर मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, मृत्यु सबके लिए कॉमन है, मृत्यु सबको आती है, इसलिए इसको बोलते हैं, और इस धरा इस जगत को मृत्यु संसार बोलते हैं। और जो दूसरा वो अमृत तत्व है, आगे पहले एक बार आया था भगवद गीता, अमृत तत्व है कल्पते, पर जहाँ पर मृत्यु नहीं होती ऐसे वैकुंठ धाम को अमृत तत्व है बोलते हैं। तो कृष्ण भक्ति जो है वो अमृत को प्रदान करने वाली है, ये मृत्यु संसार जहाँ पर हर रोज मृत्यु होती है, इसमें से मैं उसमें से स्विफ्ट डिलीवरर, ये मृत्यु संसार, मृत्यु संसार का एक अर्थ, ये संसार का अर्थ होता है जन्म मृत्यु का चक्र, उसको संसार बोलते हैं, जो हमारा जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसको संसार बोला जाता है, और उसको सागर के मृत्यु संसार सागर, वो सागर की तरह है, उसे मैं पर्सनली, मैं खुद आकर करता हूँ, आई पर्सनली कम टू डिलीवर देम पर्सनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भक्तों के लिए भगवान को स्वयं आते हैं, कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, अरे कहाँ भगवान और कहाँ मैं, मेरे लिए क्यों आएंगे भगवान, यहाँ पर लोग भगवान के मिथ्या बात कर रहे हैं, नहीं, भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो मुझ में सेवा में जुड़ा हुआ है, मैं खो जाता हूँ उसके लिए, उसका उदाहरण करता हूँ, जैसे ऑफकोर्स प्रभुपाद के लिए एग्जाम्पल इतना अप्रोप्रिएट नहीं लगता, क्योंकि प्रभुपाद बहुत महान विभूति है, बहुत महान सत्यावेश भक्त है भगवान के, लेकिन उनका समर्पण, उनका त्याग, उनका सेवा, उनकी भक्ति, इन सबको देख करके भगवान स्वयं प्रकट होते हैं उनका उद्धार करने के लिए, किसी और को नहीं भेजते, उनके किसी दूत को नहीं भेजते, खुद आते हैं, ऐसा भक्ति है। और ये भी सुबह एक नई बैच का, नई भक्ति शास्त्र के बैच का ओरिएंटेशन हो रहा था, तो उसमें यशोमंदर भी लेक्चर दे आए थे, और सार्वभौमा प्रभु दोनों का लेक्चर था सुबह आज, तो यशोमंदर प्रभु ने लेक्चर में कहा कि जब लोग हम नए थे कृष्ण भावनामृत में, तो हम लोग ईशोपनिषद का एक प्रसिद्ध श्लोक है उसका उच्चारण करते थे शुरू शुरू में, कृतम स्मरण, कृतम स्मरण ऐसा श्लोक है जिसमें ऐसा कहा है, हे प्रभु जब मेरा मृत्यु काल आए उस समय मेरे द्वारा जो भी आपकी सेवा की गई है उसका स्मरण करके आप मेरा मुझ पर कृपा कर देना, जो भी मैंने सेवा की है आपकी उस सब का चिंतन करके उसको एक बार स्मरण करके मुझ पर अधिक कृपा कर देना, पूरे लाइफ के दौरान मैंने जो कुछ भी किया है आपके लिए, तो इस प्रकार की प्रार्थना मुझे ऐसा बता रहे थे कि अब तो बोले हमारा उतर नीचे उतरने की टाइम आ गया, हम लोग बोले हम बूढ़े हो गए हैं, अभी हमारा शरीर तो अभी पता नहीं कब चला जाएगा, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जो की गई सेवा है उसको थोड़ा सा दृष्टिपात करके उसको हमें मुक्त करें, हमें कृपा दें, जस्ट सेइंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्रता के वास्ते बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं भवामी न चिरात पार्थ, मैं खुद आऊंगा और आपको मृत्यु संसार से उद्धार करूंगा, भक्तों को कई बार समस्या का सामना कर हो सकता है, लेकिन उसको कृष्ण के द्वारा दिए गए इस वचन का पूरा विश्वास है। वो वचन है ना, ये तो वचन हो गया कि तेषां अहम समुद्रता संसार सागर में खुद आता हूं, भवामि न चिरात पार्थ मैया वेश तो चेतसाम, ऐसे लोगों को मैं खुद उद्धार करने आता हूं। तो ये वचन है, इस पर भक्तों की श्रद्धा होती है कि ये वचन भगवान ने दिया है तो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। सो प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, समरी कैन रीड द पर्पस ऑफ दिस वर्स वहां से। इस श्लोक का तात्पर्य,
इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य तो चाहिए कि मैं न तो सदाम करूं कि वेदियों में मुझे ना ही कोरे चिंतन में ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त पक्षियों को प्राप्त करता है जो अपने योग वेदियों चिंतन अनुष्ठान यमों दान पुण्य आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है।
ओके, दैट इज फर्दर।
केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भी भक्त सरलता रसुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है, लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है, सर्वधर्मान् कृतञ्जय मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा सुर। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण।
अब कौन सा तात्पर्य पढ़ रहे
हैं?
और छठा का है द पर्पस ऑफ दिस वर्स इज दैट a devotee does not need to practice ashtanga yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. You got that? The responsibility is taken by the Lord himself. He clearly states here that he himself becomes the deliverer. You got that point? A child is completely cared for his by his parents. Mil gaya aapko? Padhi.
तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार स्वयं भगवान अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धार बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योग अभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी तो भगवान अपने अनुग्रह स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भव सागर से उभार लेते हैं। कोई कितना ही विशुद्ध रात क्यों ना हो और कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल दे तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भाव की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने।
ओके, सो तो भक्तों का जिम्मेदारी क्या है? कृष्ण भावनामृत में जुड़ करके कृष्ण की सेवा करें। तो फिर क्या कृष्ण आपको माया से दूर करने की सारी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं? मैं कई बार भक्तों को कहता हूं कि इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब आप भक्ति योग में जुड़ते हैं तो आप कृष्ण से वन टू वन इंटरेक्शन कर रहे हो। जैसे भगवान मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, भगवान आपके साथ भी व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करेंगे, पर्सनली। ऐसा नहीं कि एक फैमिली के साथ एक व्यवहार, मैंने बताया था लास्ट टाइम, पर्सनली व्यवहार करते हैं। जैसे आपके अध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, आपके साथ कुछ और व्यवहार, आपकी पत्नी के साथ कुछ और व्यवहार, आपके किसी और के साथ कुछ और व्यवहार, किसी और के साथ कुछ और व्यवहार। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान भी सभी भक्तों के साथ पैकेज वाला सेवा नहीं करते, फैमिली पैकेज में भक्ति होती है, ऐसे नहीं, अलग अलग इंडिविजुअली सबके साथ व्यवहार करते हैं। सो भगवान खुद आपको माया से धार करने का पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, और ऐसे तो है नहीं भगवान की जो जिम्मेदारी ले उसका पालन ना करे, अर्थात वो तो निश्चित हो गया कि जब भगवान ने जिम्मेदारी लिया तो वो कार्य अपने आप हो जाएगा। इच्छा मात्र से सृष्टि का सर्जन करते तो एक भक्त को मृत्यु संसार से बाहर करना क्या मुश्किल बात है, कोई बहुत बड़ी बात है। वासुदेव विप्र जो थे, वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किए थे कि एक मेरी विनती स्वीकार करो, क्या तो क्या कि चैतन्य प्रभु इस संसार में जितने भी जीव है उन सब का पाप का बोझा मेरे सिर पे रख दो, संसार में जितने भी जीव है उन सब के पाप का बोझा मेरे सिर पे रख दो और सबका उद्धार कर दो। आपको कभी ऐसा विचार आया, संसार में जितने जीव है उन सबके पाप का बोझा मेरे सिर पे रख दो और मैं अकेला अनंत काल के लिए नरक में सड़ूंगा, अनंत काल के लिए, बाकी सबका उद्धार करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर मैं सबका पाप तुम्हारे सिर पे डाल सकता हूँ और सबका उद्धार कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे सिर पे डालने की मुझे क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हारी इच्छा मात्र से सबका उद्धार कर देता हूँ, सबके पाप को जला के भस्म कर देता हूँ इसी समय। प्रभु महाप्रभु किए ऐसे सबका उद्धार, तो एक इच्छा मात्र से सृष्टि का सर्जन करने वाले जो भगवान है उनके लिए किसी भक्त को मृत्यु संसार से पार करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो भक्त उनकी सेवा में जुड़े, जो आगे के जो श्लोक थे ना, जो वो भगवान चाहते हैं मृत्यु संसार से उद्धार करना तो गारंटेड है ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो ऊपर वाली जो बात है ना वो सब भगवान चाहते हैं। मई ये तो सर्वाणी कर्माणी है, मई संजय समर्पण, ये भगवान चाहते हैं, ये भक्त करें, बाकी वो तो सब बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप मिल ही जाएगा। और ऐसा भी भगवान ऐसा भी छोड़ नहीं दिया कि मिल जाएगा, मैं खुद आऊंगा, खुद स्वयं आऊंगा, मैं पर्सनली ऐसा बोल दिया। So, this is the jewelry's mood is so pure that it does not even desire liberation. अगर उसको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है उसको वो मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते स्मार्थ, आचार्य कहते हैं मुक्ति जो है जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजे के बाहर हाथ जोड़ करके मुक्ति खड़ी है, जब चाहो मुझी सेवा में उपयोग करो, किसके वैष्णव के, जो भक्त होता है उसके लिए मुक्ति साफ बाहर खड़ी हाथ जोड़कर, मुक्ति जो है भी हाथ जोड़कर मेरा उपयोग करो, मुझे उस सेवा का अवसर दो, लेकिन भगवान ने दोनों को मना कर दिया, अंदर नहीं आने का, हमारे क्षेत्र में अंदर नहीं आने का, मुक्ति को भी नहीं, मुक्ति को भी नहीं। सो नम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ते महेश्वर, मैं तो क्या आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुक्ति नहीं चाहता, भगवान के धाम जाना नहीं चाहता। कुछ भक्त होते हैं वो भाई ये संसार बड़ा दुष्कर है, या सब लोग बड़े कठिन है कि किस पे विश्वास करे किस पे ना करे, बस ये झंझट खत्म हो और भगवान के धाम चला जाए। भगवान के भक्त होते इस प्रकार से स्वार्थी नहीं होते, भगवान के भक्त जो होते हैं वो जन्म जन्म सेवा करना चाहते हैं। अगर आपको दूसरा जन्म लेना पड़े अगर आपको सेवा के लिए, तो क्या आप अपने आप को प्रस्तुत करोगे, क्या आप लेने को तैयार हो दूसरा जन्म इस घोर कलयुग के अंदर, यहाँ हमारी पक्का कसौटी है। यदि हाँ तो इसका अर्थ है कि आप स्वार्थी नहीं हो, आप सेवा करना चाहते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, दूसरा जन्म लेने को भी तैयार हो। अगर आप चाहते नहीं 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 और किसी को बोल दो ना, मुझे क्यों बोल रहा, ठीक है आपको भगवान के धाम में जाए देंगे। भक्तिवान ठाकुर कहते हैं कीते जन्म हो यथा तुआ दास, अगर मैं कीड़े का जन्म अगर मुझे मिलता है आपके दास के रूप में, बहिर्मुख ब्रह्मा, आपसे बहिर्मुख होकर ब्रह्मा बनने का भी मुझे कोई इंटरेस्ट, यदि तब इच्छा हो, यदि अगर ऐसा हो कि मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े, ऐसे भक्तों ठाकुर उस सॉन्ग में गाते महाराज देह गेह जोगी झुमोर, उसमें गाते हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े कहीं कभी ऐसा हो तो भकत गृहित जनी जन्म हो, मेरे किसी भक्त के घर में मुझे जन्म प्राप्त हो ऐसा आश्वासन। अगर आपको ऐसा लगे मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तो भक्त गृहित जनी जन्म, कोई भक्त के घर में मुझे जन्म लेना, क्यों ऐसा मांग रहे? वो इसलिए मांग रहे क्योंकि सेवा करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भावना से भगवान के भक्त जो है वो जुड़ते हैं, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ऐसे भक्त जो होते हैं इनकी भक्ति से वो कृष्ण को पूरा आकर्षित कर लेते हैं, फुल भगवान उनके सामने पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट शाइन करते हैं वो, तो भगवान उनके प्रति विशेष आकर्षित हो जाते हैं, एज ए स्पेशल मर्सी कैन रिसीव। सो फिर उस भगवान को, आई मीन वो भगवान उस भक्त को सब प्रकार की सहायता करते हैं, सब प्रकार से सहायता करते हैं, जो ये मई ये जो सर्वाणी कर्माणी जो है उसको सब प्रकार से सहायता करते। अब सोचो सबसे पहले तो उसके पास कोई भौतिक इच्छा है नहीं, उसको अपने लिए कुछ करना नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर भगवान सब सुविधा देते, जैसे प्रभुपाद को दी, सामने से लोग आएंगे स्वामी जी हमारी जगह यूज करो, स्वामी जी आपकी टिकट मैं स्पॉन्सर करूंगा, स्वामी जी आपको ये चीज मिलेगी, सब लोग अपने आप से सुविधा भगवान भेजते हैं ये सुविधा, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल कृष्ण को प्रसन्न करना और किसी को और कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करेगा वो। मई सरो मई संजय से मत पर संपूर्ण रूप से मुझ पे आधारित, तभी वो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भक्त जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आधारित होते हैं, पूर्ण रूप से जो कृष्ण करवाना चाहते हैं उनसे वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। सो इच्छा भौतिक इच्छा से मुक्त होना अर्थात और कोई इच्छा नहीं होना, ये गुण भगवान को बहुत पसंद है, कृष्ण लाइक्स इट, बहुत अच्छा लगता है कृष्ण को, इस भक्त को और कोई इच्छा नहीं है, इज सो हैप्पी, वो बस ये देख के वो फिर बहुत कृपा करते हैं, इज सो हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इसको ना भोग वांछा, इसको इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, इसको मुक्ति की इच्छा नहीं है, इसको मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए मेरी सेवा के अतिरिक्त, बस इन सब चीजों को देख करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये क्वालिटी हमें डेवलप करना पड़ेगा कि ये एकदम से तो आएगा नहीं ऐसा क्वालिटी, तो धीरे 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 साधन करने से प्रैक्टिस करने से ये क्वालिटी हमें प्राप्त हो सकती है। श्री प्रभुपाद दसवें स्कंध में बताते हैं दोज आर ट्रूली विपश्चित, अर्थात लर्नेड जो है वो लोग किसी भी अवस्था में रहते हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं, प्रेमान जनच्छु यदि भक्ति विलोचने, सब प्रकार की अवस्थाओं में वो लोग भगवान का चिंतन करते, विशेष करके व्हेन अ डिवोटी इज इन डिस्ट्रेस ही सीज दैट लॉर्ड हैज अपीयर्ड एज डिस्ट्रेस जस्ट टू रिलीव और प्यूरिफाई द डिवोटी फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। भगवान आपके भक्तों के जीवन में कभी कोई दुख भी आता है तो दुख आने पर कंप्लेन नहीं करते हो, और दुख आने पर कष्ट, देखो दुख आएगा तो कठिनाई तो होगी ना, अगर आपको दुख आएगा फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो आप चिंतित हो जाते हो, आपको कठिन होता है क्योंकि आप कई चीजें आपको बंद करनी पड़ती है रोकनी है ना, करना बंद करना पड़ता है फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो, किसी के हेल्थ क्राइसिस आते हैं, हेल्थ क्राइसिस में क्या होता है जैसे किसी वक्त को बहुत बुरी बीमारी लग गई या किसी वक्त को अचानक कोई अटैक वगैरह आ गया तो ये हेल्थ क्राइसिस होती है। तो कठिनाई तो होती है सबको, खुद को भी होती है और अगर किसी रिश्तेदार को हुई उसके कारण भी होती है। तो ये सब तो होता है, लेकिन भक्त सोचता है कि मेरे दुख के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, जिसके माध्यम से वो मेरी सारी अशुद्धियां हटा देंगे, मुझे शुद्ध कर देंगे। इसलिए मुझे इसके लिए भगवान का आभारी होना चाहिए। देखो, अगर जब तक मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे, हम प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, जब तक मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे, श्रीमद् भागवत हमने बताया, अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के भक्त क्या कहते हैं, तत्ते नुकंपा सुसमिक्षमाण, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तत्ते अनुकंपा सुसमिक्षमाण, अर्थात हे कृष्ण, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है कष्ट, ये आपकी अनुकंपा है, तत्ते अनुकंपा सुसमिक्षम। और वास्तव में भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, मेरे किए गए कर्मों का ही परिणाम मैं भुगत रहा हूं, मैं पहले कुछ किया होगा ऐसा, उसका परिणाम मुझे आज प्राप्त हो रहा है, तो वो परिणाम भुगतने में भी आपने सहायता कर दी। कि अगर आपने सारा परिणाम को 10% बना करके दे दिया, पूरा अगर परिणाम भुगतना जाता तो खत्म हो गया होता मेरे को, है ना। फिर ऐसा सोच करके भक्त मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत हो जाते हैं, इस आशा के साथ कि एक दिन कृष्ण अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, एक दिन अवश्य कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे। ऐसा भक्त जो होता है उसको जैसे क्या बोलते हैं, जो दाएं भाग, अर्थात जो आप वारिस होती है ना, वारिस बाप का खजाना, कृष्ण भक्ति उसके लिए बाप का खजाना है, उसको मिल ही जाता है। सो इनहेरेंट, तो इस तरह से उसको प्राप्त होता है। The appearance of distress is a negative process intended to give the devotee relief from this material world, which is called मृत्यु संसार। ये मृत्यु संसार से आपको उद्धार करने के लिए छोटे मोटे दुख आपको आते हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको जो छोटे मोटे दुख आते हैं, लेकिन अंत में आपको उद्धार हो जाएगा, अंत में आपको संसार चक्र से बाहर निकाल देंगे। तो अभी जो छोटे मोटे दुख आते हैं उसका चिंता मत करो। This is what Prabhupada is saying. To save a surrendered soul from repeated birth and death, Lord purifies him of contamination by offering him a little distress. This cannot be understood by non-devotee, but a devotee can see this because he is vipashchit. क्योंकि भक्त जो है विद्वान है, इसलिए समझ सकता है। अभक्त जो होता है वो दुख को देख करके डिस्टर्ब हो जाता है, और वो कई बार तो कृष्ण भक्ति को भी छोड़ देता है दुख के कारण, कि मैं इतना सब सेवा किया, अभी इतना मुझे दुख आ गया, क्या क्या करने का भगवान को। कुछ लोग को फिजिकल प्रॉब्लम होती है, मैं कहीं देखा है ऐसे एक व्यक्ति, जनरली वो लोग नास्तिक ही हो जाते हैं, भगवान को मानते ही नहीं। जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो कोई बदरू बदसूरत है, किसी की सूरत बहुत बेकार है, या फिर कोई बुद्धू है, या कोई इलिटरेट है, वो भी कई बार भगवान को मना कर जाए, भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। एक व्यक्ति था, उसके साथ उसकी वो एक लड़की से प्यार करता था, और लड़की जो थी वो बड़े ऊंचे खानदान से थी, बहुत धनवान थी, और लड़का जो था वो गरीब था, बहुत आमदनी बहुत कम थी। तो बेचारा सोच रहा था कि क्या करूं। लड़की ने कहा कि देखो भाई, मेरा बाप तो शादी नहीं कराएगा, मैं इतना धनवान हूँ, वो तो गरीब लड़के से शादी नहीं कराएगा। तो वो बेचारा सोच रहा था कि क्या है ये। तो फिर बोले ट्राई तो करते रहे, एक बार प्रपोजल डाला तो उसने बाप ने अब बुरी तरह से उसको इंसल्ट करके भेज दिया, बोले अपना औकात तो देखो कम से कम, अब वो मेरी बेटी इतना धनवान फैमिली की, जाओ जाओ इधर से, बहुत सारे बोल करके हटा दिया। वो बेचारा इतना निराश हो गया, तो शादी होगी नहीं, और सबको देवदास जैसा बन गया, और गया सीधा एक नदी के पास सुसाइड करने के लिए। इतना निराश हो गया। एक संत उधर से जा रहे थे, एक भक्त, तो उसने उनको देखा, बोले क्या कर रहे थे? उसके चेहरे से उसका देखा नदी है, चेहरा देखा, पता पड़ गया ये कुछ गलत करने वाला है। तो उसको बोला सुसाइड करने वाले हो? बोले मुझे कोई रोको नहीं, मुझे कोई टोको नहीं, मुझे कुछ बोलना है, आप अपना काम करो जाओ। तो बोले मैं आपको कहाँ रोकना है, आप शौक से सुसाइड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुसाइड करो, लेकिन मैं तो कंफर्म कर रहा हूँ कि आप सुसाइड करने वाले हो। तो बोले हाँ मैं सुसाइड करने वाला हूँ। ठीक है, एक रीजन तो बता दो क्यों करना चाहते, फिर करो, बोला अच्छे से मरो, शौक से मरो, क्या रीजन है बताए रीजन। बोले मना कर दिया उसने बाप ने, और मैं तो शादी कैंसिल हो गई, और मैं इतना प्रेम था वो टूट गया सब, ये हार्ट ब्रेक हो गया, भगवान मुझ पर कुछ नहीं दिया, मुझे बिल्कुल भगवान इतना निर्दयी है, मुझे कुछ नहीं दिया, पैसा दिया है, पैसा थोड़ा दिया होता तो शादी तो हो जाती, कुछ नहीं दिया भगवान ने। बोले अच्छा कोई बात नहीं, भगवान कुछ नहीं दिया तो शादी कर, अब मरना है तो मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मरने से पहले क्या मुझे आपका लीवर डोनेट कर सकते हो? मैं उसके लिए आपको 20 लाख रुपए दूंगा। तो बोले 20 लाख तो लीवर डोनेट? बोले नहीं लीवर का सो, बोले कोई बात नहीं, 1 किडनी का 12 लाख, दूसरी किडनी का 12 लाख, 24 लाख ले सकते हो। देखो लीवर का 20 लाख, दो किडनी का 12 लाख, 24 लाख, 44 लाख हो गया, और दो तीन चीज और मांग ली, सब मिला करके हो गया 1 करोड़। तो बोले इतना दे दो फिर मरो आराम से। तो बोलने लगा कि भाई हाय पूरा मरूंगा ना, आधा थोड़ी मरूंगा, इस तरह से थोड़ी मरूंगा। तो फिर उसने बताया कि भगवान ने इतना सब कुछ तुम्हें दिया है फिर भी कंप्लेन कर रहे हो। जनरली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ऊपर देखना चाहते हैं, नीचे नहीं देखते। मेरे पास इतना है लेकिन वो ऊपर देखेगा कि उसके पास इससे ज्यादा है। हाँ अब तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेकिन वो नीचे नहीं देखता कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो देख सकता हूँ, वो बेचारा देख नहीं पाता है, वो आपको ध्यान में नहीं आता है, मैं तो सुन सकता हूँ, वो तो सुन भी नहीं सकता है, ये सारी चीज नहीं देखता। इसलिए कहने का तात्पर्य मैं एक्चुअली एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि भगवान ने आपको इतना सब दिया है, ये भक्त समझ सकता है कि मेरा कर्तव्य उनकी सेवा करना है, अभी उनसे कंप्लेन करना नहीं है। इसलिए हमारा जो दुख है वो दुख का कोई अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभुपाद ने जो कठिन परिश्रम उठाए उसके सामने हमारे इस्कॉन के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं या फिर आप अनुभव कर रहे हो उसका क्या वैल्यू है? अब प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया है उसके सामने हम क्या कर रहे हैं? तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी हाथ पे हाथ लगा कर बैठे रहते, ऐसा करेंगे तो नहीं करूंगा, ये होगा तो भाई कर क्या करो, तो एग्जाम्पल देखो प्रभुपाद का, फिर विचार सोचो। तो इस तरह से भक्तों को सोचना चाहिए। अभी 8वें श्लोक में भगवान फिर से कहेंगे, उसी विषय में आगे बताएंगे, पढ़िए। ये 8 से 12 जो 5 श्लोक है वो एक एक करके भगवान बताएंगे, अगर ये तुम करो ये श्रेष्ठ है, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ऐसे
मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करो।
यस, तो भगवान ने यहाँ पर सर्वोच्च चीज बता दिया, फर्स्ट क्लास थिंग, फिक्स योर माइंड अपॉन मी और सभी अपनी बुद्धि को मुझ में समर्पित करो, इस तरह से हमेशा मुझ में वास करो। मुझ में का अर्थ होता है मेरे चिंतन में या मेरे भाव, मेरी भक्ति में तुम निवास करो। You stay always in me, without a doubt. Yeah. So, ज्ञानी जो होता है वो अव्यक्त की उपासना करता है, और भक्त जो होता है वो भगवान कहते हैं मुझ में, डायरेक्ट मी, तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से ये आदेश दे दिया कि मेरे जो सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव जो स्वरूप है मेरा, उसमें तुम अपने मन को स्थिर करो। यहाँ पर मई शब्द जो है उसको तीन बार उपयोग किया गया है। मई मई कौन से मई है? अगर इस तरह से कोई करेगा तीनों चीज जो भगवान ने तीन चीज बताई है, तो तीनों चीज के कारण वो भक्त जो है वो हमेशा कृष्ण के साथ ही रहेगा। यद्यपि वो इधर नहीं है, इधर है फिर भी वो इधर नहीं है। इसको बोलते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था। आप इधर ही हो लेकिन आपका चिंतन कृष्ण के साथ है, आप निरंतर कृष्ण के साथ हो। प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल बताया कि जो सिद्ध भक्त होते हैं, ये जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उत्तम अधिकारी, वो लोग निरंतर कृष्ण के साथ रहते हैं। आपको लेकर निरंतर कृष्ण के साथ वो कैसा होता है? तो फिर प्रभुपाद ने उसको और स्पष्ट किया कि निरंतर कृष्ण के रहने के अनेक उपाय है, कुछ जिसमें ऐसे एक उपाय है निरंतर उनकी सेवा में जुड़े रहते हैं। अभी उनकी सेवा में जुड़े रहने का अर्थ क्या होता है? इस्कॉन के अंतर्गत आपको जो भी सेवा प्राप्त होती है वो किसकी सेवा है? कृष्ण की सेवा है ना। तो यद्यपि आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो लेकिन वास्तव में आप कृष्ण के साथ हो, आप कृष्ण से दूर नहीं हो, आप सेवा कर रहे हो कृष्ण की पूर्ण भाव से। हाँ, ये हो सकता है कि सेवा के दौरान आपका मन जो है विचलित होता है, लेकिन अधिक सेवा करने से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो सेवा के माध्यम से भक्त जो है भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये सबसे बेस्ट प्रोसेस यही है सभी मार्ग में। आगे के मार्ग में भगवान, आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, अगर ये नहीं हो सकता है तो और क्या हो सकता है, ये सब भगवान बताते हैं। लेकिन सबसे उत्तम यही है, अर्थात भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम भक्ति, फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस यही है। लेकिन मैं मेरे मन को हमेशा इस तरह से कृष्ण के चिंतन में लगा नहीं पा रहा, मैं निरंतर कृष्ण का चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या फिर मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए मेरे लिए? फिर क्या है? इज देयर एनीथिंग फॉर मी? दैट वॉज नॉट फॉर मी, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। एकदम से आप बोलो कि आप 24 घंटा कृष्ण का चिंतन करो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये, तो क्या करो? दूसरा कोई मार्ग है? हाँ है ना, एक मार्ग है, फिर 9 नंबर का श्लोक क्या है पढ़िए।
हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो।
हाँ, अगर तुम राग भक्ति का पालन नहीं कर सकते, तो राग भक्ति था पहले, तो साधन भक्ति का स्वीकार करो, साधन भक्ति का पालन करो। फिक्स योर माइंड विदाउट डिवोशन, देन फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति होगा, जिसमें 4:30 बजे मंगल आरती में उठो, मुझे तो नहीं उठा जा रहा है, प्रयास करो, थोड़ी मेहनत करो, उठ जाओ। राइट, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि हम साधन अवस्था में है, मन स्थिर नहीं है, इसलिए ये साधन भक्ति बताई। साधन भक्ति में बहुत सारी चीज आती है, 4:30 बजे मंगल आरती, डीटी वर्शिप करना, भोग लगाना, प्रसाद खाना, सोलह माला जप करना, भक्तों का संग करना, भगवत कथा सुनना, ग्रंथों को पढ़ना, ये सब आता है साधन भक्ति में, नियम के अनुसार भक्ति, विधि विधान के अंतर्गत। तो ये भक्ति का आश्रय करो, इस तरह से फिर तुम मुझ क्या है व्हाट इज मुझे प्राप्त करने की चाहत, फिर ये साधन भक्ति के माध्यम से वो आपने रूप था ना, भजन क्रिया अनर्थ से निवृत्ति, फिर उसके बाद आता है निष्ठा रुचि आसक्ति, है ना। तो ये सब आता है, तो शुरुआत होती है साधन भक्ति से, लेकिन साधन भक्ति के माध्यम से ये चीज तो आपको प्राप्त होती है निष्ठा। निष्ठा जब होती है ना किसी में, तब फिर वो अनर्थ से ऑलमोस्ट हट गया है, स्थिर हो गया वो, उसको आप पूरा संसार पटक दो ऊपर से नीचे, लेकिन उसको वो आप भगवान की सेवा छोड़ेगा नहीं, वो निष्ठा हो गई उसको, फिर आ सकते हो, फिर रुचि इत्यादि होता है। तो ये सब होने के बाद फिर वो जो अंत जो स्टेज लास्ट वाले जो स्टेजेस है वो टेक्स्ट नंबर 8 में आते हैं, जो मैंने पहले वाला जो श्लोक दिया वो सब टेक्स्ट नंबर 8 में आते हैं, लेकिन उससे पहले के जो है वो सब सारे टेक्स्ट नंबर 9 में, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके। तो इस तरह से कोई कर सकता है। यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने धनंजय बोला है, धनंजय राइट। अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध करके धन इकट्ठा किया था, लेकिन अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अपने मन के साथ युद्ध करो और मुझमें ज्ञान रूपी जो धन है उसको तुम ग्रहण करो, धनंजय इस रूप से। तो प्रभुपाद साधन भक्ति के विषय में कहते हैं, टू प्रैक्टिस द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योग वन शुड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। वन शुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक बाथ, एंटर द टेम्पल, ऑफर प्रेयर्स, चांट हरे कृष्णा, कलेक्ट अ फ्लावर्स टू ऑफर द डीटी, कुक फूड स्टफ्स टू ऑफर टू द डीटी, टेक प्रसादम एंड सो ऑन। देयर आर वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच वन शुड फॉलो एंड वन शुड कॉन्स्टेंटली हियर भगवद गीता श्रीमद भागवतम फ्रॉम प्योर डिवोटीज। दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प एनीवन राइज टू द लेवल ऑफ लव ऑफ गॉड। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर बताया, ये सारे कार्य आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत होने चाहिए, 100% गाइडेड बाय स्पिरिचुअल मास्टर, इस तरह से ही होना चाहिए, अन्यथा आपको पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होगा इसका। रोज 16 माला जैसे करते हैं तो क्या प्रश्न पूछा
पाए ऐसे करना।
हाँ, इज ए पार्ट ऑफ डेली, हाँ वो डेली रूटीन में, जैसे सबके डेली रूटीन अलग है, जैसे पुजारी का काम है ड्यूटी वर्शिप करना, माताओं का काम है कुकिंग करना, फिर कुछ भक्तों का काम है भगवान के लिए धन लाना, कुछ भक्तों का काम है भगवान का प्रचार करना, कुछ भक्तों का काम है सफाई करना मंदिर की, तो ये डेली रूटीन में आता है सब। लेकिन ये सब भगवान से जुड़े हुए, विग्रह से जुड़े हुए, इस सब प्रकार के विधि विधानों का पालन करना। एक्चुअली देखा जाए तो आपकी साधन भक्ति में भगवान के विग्रह ही सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं। सब साधन भक्ति का जो मुख्य अंग है भगवान के विग्रह है, वही सब कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए डेली वर्षिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये सब सेवा कर पाओगे, है ना। डीटीओस की सेवा होती है सेवा, लेकिन आपकी इंद्रियों को जो पूरा एंगेजमेंट चाहिए ना, तो डीटीओस के माध्यम से हो पाएगा। सो मन को किसी भी तरह से स्थिर किया जाए भगवान के चरणों में, मन को, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त रसावृत में कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, भगवान का हमेशा विष्णु का चिंतन करो और कभी उनको भूलो मत, सर्व विधि निषेधस्योर एतयोर एव किंकर, जितने भी विधि और निषेध है संसार में शास्त्रों में, ये सब इसी दो नियम के दास है, हमेशा कृष्ण का चिंतन करो और कभी कृष्ण को भूलो मत। अब ये हो नहीं पाएगा, ये हमेशा भगवान को याद नहीं रख सकते, तो ये विधि निषेध रूल्स रेगुलेशन ये हमें सिखाया है भक्ति रसामृत में, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब इसी के आधार पर है। एक तो है हमेशा याद रखो सारे करने वाले कार्य, अर्थात 4:30 उठ जाओ, 16 माला का जप करो, भागवत सुनो, भागवत पढ़ो, ये है करने वाले कार्य, राइट। तो इसमें आता है विधि और निषेध क्या है, भक्तों का संग त्याग करो, भगवान के प्रतिकूल कार्य है इच्छा है उसका त्याग करो, यह है निषेध। तो जितने भी विधि है और जितने भी निषेध है उस सब का एक ही आधार है कि कृष्ण को कभी भूलो मत और कृष्ण को निरंतर याद रखो, यही उसका आधार है और कोई आधार नहीं है। लेकिन अगर समझ लो कि मैं वो भी नहीं कर सकता, ये भी मेरे लिए मुश्किल है करना, तो क्या किया जाए? तो फिर अब भगवान स्टेप डाउन करते जाएंगे, योगा लेटर में से कुछ पॉइंट निकाल कर देंगे, आपको पढ़िए क्या कहते हैं।
यदि तुम भक्ति योग से विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे।
हाँ, तो एक रूप से देखा जाए तो ये निष्काम कर्म योग है, मेरे लिए कर्म करो अपनी इच्छा से, फल की इच्छा से नहीं। यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशन ऑफ भक्ति योग, जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी। भक्ति योग से थोड़ा सा अलग है, जिसमें आप कर्म करके फल भगवान को अर्पण कर देते हैं, यद करोसि यद अस्नासि यद जोसि यद आसि। तो कर्म जो है भगवान के, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं भक्ति मार्ग में सीधा नहीं जुड़ पाते साधन भक्ति में, लेकिन वो लोग अगर आप थोड़ा सा आसान उपाय बताओ कि आप नित्य सेवा ज्वाइन कर लो, या फिर आप कुछ डोनेशन दो रेगुलर, या फिर आप कुछ सहायता करो इस तरह से, तो ये उनके लिए आसान है करना, ये कर सकते हैं। लेकिन वो जो निरंतर करने वाला है वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप तैयार नहीं है, माया से आकर्षित है, अग्निहोत्रा के वश है, तो इसलिए वो तैयार नहीं है सभी नियमों का पालन करने के लिए। तो इसलिए एक स्टेप डाउन करके बताया भगवान ने कि इस तरह से प्रपात व्यवहारिक उदाहरण देते हैं इस प्रकार के सब के रीड। इफ वन हैज सफिशियंट मनी कैन हेल्प इन बिल्डिंग एन ऑफिस और टेम्पल फॉर प्रोपेगेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस और कैन हेल्प विथ पब्लिकेशन, देर आर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड वन शुड बी इंटरेस्टेड। ये बात
है, यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण महाराज के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर जीवित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण महाराज के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण महाराज की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी।
यहाँ पर उपाय ने दोनों बताया, निष्काम कर्म योग और सकाम, दोनों बता दिया। लास्ट वाली जो लाइन थी ना कि अगर ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम थोड़ा परसेंटेज तो दे ही सकता है, दैट इज सकाम। ये सकाम, सकाम कर्म योग अर्थात जो सिंपल जो कर्म है वो, उसको जो था वो निष्काम कर्म योग। लेकिन अगर कोई बोलता है कि मैं ये भी नहीं कर सकता ये सारे स्टेजेस में, अगर इसका भी हम पालन नहीं कर सकता तो फिर, तो फिर भगवान आगे बताते हैं, सुनिए क्या है आगे।
किंतु यदि तुम मेरे इस दानव रूप में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्मों के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो।
हाँ, यहाँ पर भगवान कहते हैं ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम फल का त्याग तो करो, फल का त्याग तो कर दो कम से कम कर्म। पहले सब श्लोकों में तो भगवान ने कहा कि ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, इस श्लोक में कुछ बोला ही नहीं है ना, ऐसा बोला ही नहीं, इस भगवान कुछ लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा है? तो भगवान बोले कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो करो, दैट्स इट। भगवान इसको अनुमोदन इतना नहीं दे रहे हैं, भगवान ने तो लास्ट में ये नहीं हो सकता, मैं जो ठीक है वो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है बाबा इतना तो करो कम से कम, कर्म का परिणाम जो है वो सेल्फलेस निस्वार्थ भाव से तो कर्म करो कम से कम, इतना तो करो तभी तुम कम से कम। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इट मे बी दैट वन इज अनेबल टू सिंपथाइज with the activities of Krishna consciousness. Yes, somebody can read further. It may be that one is unable to even to sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familiar and religious consideration and because of some other impediments.
Yes, sir.
यदि आप प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति
जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उस खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या लगी हो उसे यह सलाह दी जा सकती है जाती है कि वह अपने कार्य कलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक जगहों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है। ऐसे भी पाया गया है कि कृष्ण महामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की सारी कमाई का प्रत्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के पद के प्रत्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमश अपने मन को स्वस्थ बनाता है और उस विमत मन स्थिति में वह कृष्ण महामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण महामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण महामृत जब मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण महामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का प्रत्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दिशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके।
So, इस तरह से प्रभुपाद खुद बताए कि किस तरह से मनुष्य इस तरह से थोड़ा सा अगर कई बार कोई हार्ट अर्नेड जो मनी होती है उसको किसी संस्था को देते हैं तो वो एक प्रकार से थोड़ा सा त्याग है उनकी ओर से। तो वो उसका उपयोग वो खुद नहीं करेंगे, किसी संस्था को दे दिया वो लोग करेंगे। तो ये ऐसे जो इतना आसान नहीं है, जो लोभी होते हैं वो लोग धन नहीं दे सकते, बड़े अटैच होते हैं, बोले मैं कमाऊंगा तुम भोग करोगे ना, वो तो मैं ही भोग करूंगा, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो दान देते हैं, और ऐसे भी बोला जाता है जहां धन है वहां मन है, जहां जिसका धन होता है वहां उसका मन होता है। अगर उसने डोनेशन दे दिया कृष्ण भावनामृत में, अगर जिसको हमने अगर डोनेशन दिया तो स्वाभाविक रूप से मन उसका उतर ही आएगा, आज नहीं तो कल वो आएगा तो सही, क्योंकि मान उसका इधर है, धन इधर आ गया। तो ये धन लेना चाहिए इस तरह से उन लोग का। यस,
काफी बार ऐसा देखा गया है जैसे कुछ लोग जो है यहाँ पे डोनेशन देते हैं कुछ फेस्टिवल में या रेगुलरली डोनेशन करते हैं, मगर फिर वो लोग उससे स्टेज से आगे नहीं बढ़ते। वैसे देखा जाए एक रूप से देखा जाए तो वो अच्छा भी है क्योंकि हमें धनलक्ष्मी की आवश्यकता होती है तो काफी मात्रा में वो दान करते हैं, मगर वो फिर वो स्टेज से आगे नहीं बढ़ते। ना ही मैंने ऐसा देखा है कि काफी प्रयास करते हैं उनको प्रचार करने का, हैवी प्रीचिंग भी नहीं करते हैं क्योंकि वो जो स्टेज पे है उनका वो जो सेवा है वो ठीक है। तो ऐसे में कैसे उसको समझा जाए, कैसा होना चाहिए?
आइडियल सिचुएशन ऐसी होती है कि जो धन अनुदान लेने वाले भक्तों की जो टीम होती है उन लोग का स्ट्रेटेजी होती है पूरा, जिसमें वो लोग धीरे 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 करके उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये फॉलोअप होता है और ट्रेनिंग होती है इस प्रकार से। तब ये इस प्रकार के जो बड़े डोनर होते हैं, ये डोनर जो होते हैं उनका एक अपना तरीका होता है भक्त बनने का। उन लोग को अगर आप बैठो लेक्चर में बैठ जाओ और इस तरह से मेरी बात सुनो तो ऐसे वो भक्त नहीं बनते जनरली। इस तरह से तो उनको एक उनके तरीके से उनको भक्त बनाना पड़ता है। तो उनके तरीके से भक्त बनाना कई बार समय लगता है, लेकिन उस तरीके का उपयोग करके धीरे 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 उसको कृष्ण भक्ति में जोड़ा जाए। और परिणाम क्या है कि जब वो खुद ही जुड़ जाएगा कृष्ण भक्ति में, आप सोचिए कि आप डोनेशन ले रहे हो वो अपनी इच्छा से कुछ देगा, जो कुछ दे रहा है वो देगा, लेकिन अगर वही आपकी तरह भक्त की तरह ही वो भी सोचने लगेगा तो उसके लिए फिर धन देना कोई बड़ी बात है? वो तो आपको अनलिमिटेड धन देगा, जैसे हमारे अमरिष्ट हो प्रॉपर डिसाइपल। अब वो खुद ही प्रभुपाद के शिष्य है तो उनके लिए धन देना तो सरल है, वो दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी और बड़े इस तरह के बड़ा आदमी है, आप उसके पास धन को तो वो हजार बार सोचेगा। लोग करोड़ों रुपए मैं सुनता हूँ कई बार, करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंक देते, यूजलेस। इसमें 50 करोड़ का नुकसान हो गया, इसमें 50 करोड़ खर्चा गया, इसमें 100 करोड़ का खर्चा। और यहाँ पर हम एक एक DOEP के लिए इतना धन इकट्ठा करने के लिए हम सबके पास गिर भी जाना पड़ता है, थोड़ा डोनेशन दो मंदिर बनाने के लिए। बट दे आर स्पेंडिंग मनी लाइक करोड़ ऑफ रुपीज, 200 करोड़ 400 करोड़ ऐसे फेंक देते हैं जस्ट लाइक दैट। तो कहने का तात्पर्य कि अगर आप उनको कृष्ण भावना में जोड़ोगे तो फिर वो आसान हो जाएगा। दैट शुड बी सम स्ट्रेटजीज।
जी एक ऑटोमेबल कंपनी है, उनके डायरेक्टर, उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन है। वो बीच में ही मैं अचानक गया था ऐसे, तो उन्होंने बोला मैं आपको याद कर रहा चलिए। अरे बोला मेरे पास 11,000 का चेक 15 दिन तक मेरे पास पड़ा रहा, लेकिन आपका नंबर मेरे पास नहीं था। बाद में मैंने वो देते है अपने को ही देते है, लेकिन मेरे थ्रू वो देना चाहता है। बाद में उन्होंने यहाँ ही दिया किसी के वर्क के द्वारा, वो यहाँ ही रहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ आके दी थी ऐसा कुछ किया। तो वो ऐसे कि ऐसे डोनेशन देने में दिन पड़े हैं, वहां भी देते हैं, अक्षय में भी देते हैं, लेकिन क्या है कि वो मतलब तो कर्म प्रधान है, मतलब कि उनको वो एक लिमिटेशन बांध कर रखी है कि भाई मैं डोनेशन देता हूँ बस, ठीक है उससे ज्यादा मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता। Yes. उसके आगे वो आना है, उनके पास टाइम भी नहीं है, लेकिन वो भक्ति में मतलब कैसे जैसे प्रभुपाद जी जैसे भगवद गीता का जैसे एक्सप्लेनेशन किया, तो कई और लोग भी जो कर्म का प्रधान कर्मों का ही प्रदान करते हैं, कर्म से हमें सक्सेस मिलती है ऐसा, उनमें उसको उनको बहुत रुचि है, कृष्ण भगवान नहीं है बस दे देते हैं।
तो इसलिए हमारे जो भक्त होते हैं जो अनुदान लेने का सेवा लेते हैं, उन लोग का एक टीम होना चाहिए और उनका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि किस तरह से इस प्रकार के लोगों को इष्ट भावना से आकर्षित किया जाए स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनको पता भी ना पड़े कि 2 साल के पहले कुछ और था, 2 साल के अंदर ये क्या कर डाला इन लोगों ने मुझे, तो मेरे सिर पे बाल भी नहीं अब तो तिलक विलक आ गया, कंट्री आ गए, धोती कुर्ता पहना दिया, ये लोग कर क्या रहे और मुझे पता भी नहीं चला। मैं इतनी बड़ी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और मुझे इन लोगों ने धोती कुर्ता पहना दिया, ओहो उसको पता भी नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे है दिल्ली में एक दो भक्त है, इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, करोड़ ऑफ रुपीज, बहुत बड़े बड़े हैं दो तीन ऐसे, और लोग अभी दीक्षित भक्त है, दीक्षा लिए हुए भक्त है, और वो लोग सारा सेवा अपने आप से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को खुद हैंडल करते हैं। 3-3 मंदिर का एक ही भक्त पूरा मैनेजमेंट को देख रहा है, हालांकि सबके प्रेसिडेंट बना दिए हैं, लेकिन वो तीनों प्रेसिडेंट को टेक केयर कर रहे हैं, एक ही भक्त है। और उसका दीक्षा भी पिछले साल ही हुआ है, 2 साल पहले, वो दीक्षा भी 2 साल पहले ही हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उसका अपना अनुभव ही इतना है कि उसके लिए एक मंदिर बना तो आम बात है। So like this, this way you should cultivate. So 8 से 10 जो श्लोक थे उसमें अलग अलग विधियों का भगवान ने वर्णन किया है, जिसमें 8वें श्लोक में भगवान ने कहा हम हमेशा कृष्ण के साथ रहेंगे, 9वें में भगवान ने कहा कि हम उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करेंगे, 10वें में भगवान ने कहा कि हम धीरे धीरे परफेक्शन स्टेज पर पहुंच पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको 11वें भगवान ने नहीं बताया, राइट 12th में ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन 11वें में, अब 12वें में भगवान रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वन वर्क फॉर कृष्ण सर्विस ऐसा भगवान बता रहे हैं। जो 10वें है उससे थोड़ा अलग है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर वेरी क्लियरली कि 12वें में जो बताया वो 10वां अगर तुम नहीं कर सकते तो 12वां करो, 11वें को रिलेशन में नहीं है। जब 12वां श्लोक आएगा उसमें भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम ये करो। तो यहां पर क्या है 10वां और 12वां कनेक्शन, 11 बीच में नहीं है। ओके सो 12वां पढ़िए।
यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान की अनुशीलन में लग जाओ,
लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म योग का प्रत्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है।
तो यहाँ पर सब समझ ही है अलग अलग मार्ग की, अगर वो नहीं कर सकते ये करो भगवान बताए। तो इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस मींस जो टेक्स्ट नंबर 10 में था वो अगर तुम नहीं कर सकते निष्काम कर्म योग वाला, अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान मार्ग को स्वीकार करो, आत्मा का शरीर का अंतर है उसको समझने का प्रयास करो। और फिर अष्टांग योग में बताया गया है ध्यान योग, उसका अनुसरण करो। कृष्ण सो काइंड, सोचो कृष्ण कितने दयालु है, पहले बोल दिया कि ये करो, ये नहीं होता तो ये करो, ये नहीं होता तो ये करो, और एक एक करके स्टेप डाउन कर रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं। तो आप भक्ति योग में जुड़ो, भक्ति योग नहीं हो पा रहा है तो विधि विधान वाली भक्ति करो, विधि विधान वाली भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम निष्काम कर्म योग तो कर लो, अगर निष्काम कर्म योग भी नहीं कर सकते तो कम से कम आत्मा शरीर का ज्ञान तो समझ लो, उतना कर लो, या तो फिर ध्यान लगाओ भगवान में। इस तरह से भगवान अलग अलग जो छठे अध्याय में और एक से छह अध्याय में जो बताया था उसको भगवान समरी के रूप में फिर से बता रहे। सो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से ही है, 8, 9, 10 और 12 इस तरह से है, जिसमें आपके स्टेप डाउन अगर करोगे तो आपके योगा लेडर इसके अंदर पूरी तरह से आती है उसके अंदर। 8 में सिद्ध अवस्था, 9 में साधन भक्ति की अवस्था, फिर 10 में निष्काम कर्म योग भी है और सकाम कर्म योग भी है, और 12 में है कर्म फलों का त्याग, और शांति सूत्र 5वें अध्याय वाला, इस तरह से तुम शांति प्राप्त करोगे। प्लीज फॉलो करो। तो इसमें निष्काम कर्म योग से नीचे जो योग और ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान उसका भी वर्णन आ गया 12 के अंदर, 10 और 12 के अंदर ऑलमोस्ट सब आ जाता है। अब प्रभुपाद कहते हैं इन समरी, समरी कैन रीड इन समरी टू रीच द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड द हाइएस्ट गोल, देयर आर टू प्रोसेस।
सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं, एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि है, कृष्ण प्रारंभ में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है, अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पद करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त था, यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग ज्ञान ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है, लेकिन यहाँ तक जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि का ही फल है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है।
यस, तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद बताते हैं प्रत्यक्ष विधि के विषय में। सो परोक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का जो हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष विधि है, और परोक्ष विधि जो योगा लेटर वाली जो विधि है वो यहाँ एलिवेटर से भी आ सकते हो और सीढ़ी के मार्ग से भी आ सकते हो। सीढ़ी के मार्ग से भी आने पर अंत तो आप इधर आ सकते हो अगर बीच में गए अटकने गए तो, लेकिन अगर एलिवेटर से आते हो तो यहाँ तो नॉन स्टॉप है, बीच में कोई फ्लोर है ही नहीं, सीधा ऊपर ही आओगे। तो ये प्रत्यक्ष मार्ग है कृष्ण भक्ति का। सो नाउ सेक्शन यहाँ पर ये खत्म होता है, अभी आगे नया सेक्शन शुरू होने वाला है जिसमें भगवान वैष्णव की क्वालिटीज का वर्णन करने वाले, 36 क्वालिटी बताएंगे भगवान अलग अलग अलग। तो उस क्वालिटी का वर्णन करने से पहले वी कैन हैव अ स्मॉल एक्सरसाइज।